ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुआ टेलीफोन संवाद। नेपाल में यूरिया मल आपूर्ति को लेकर हुई बातचीत। काठमांडू घाटी में 481 समेत देशभर में कोरोना के 1069 नए मामले आए सामने। 11 संक्रमितों की हुई मौत। 5 महीनों से बंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान आज से हो रही है शुरू। प्रदेश नंबर 2 की सरकार ने किसानों को 4 महीने का ब्याज दिया अनुदान। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 8,56,000 से अधिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच नेपाल में यूरिया मल आपूर्ति के संबंध में बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए बताया है कि टेलीफोन पर हुई बातचीत में यूरिया मल की आपूर्ति के लिए किए गए अनुरोध को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना ने सकारात्मक रूप में लिया है। आज देशभर में कोरोना के 1069 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें काठमांडू घाटी के ही 481 लोग शामिल हैं। इसे मिलाकर नेपाल में अब तक कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 40,529 हुई है। इनमें से आज 768 समेत अब तक संक्रमण मुक्त होकर अपने घर लौट चुके लोगों की संख्या 22,178 हो गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 55% लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बहरहाल देशभर में सक्रिय संक्रमितों की तादाद 18,112 है। वहीं आज 11 संक्रमितों की मौत हुई है, जिसे मिलाकर अब तक कोरोना से संक्रमित होने के बाद मरने वालों की संख्या देशभर में 239 हो गई है। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैले कोविड 19 पर रोकथाम के उद्देश्य के साथ अब तक बंद रही अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान आज रात से सुचारू होने जा रहा है। बंदी के 5 महीने के बाद सरकार ने आज से निश्चित शर्तों के साथ नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन करने का निर्णय किया था। बता दें कि हवाई यात्रा से दैनिक 500 से अधिक यात्री यात्रा नहीं कर पाएंगे, साथ ही अन्य चार्टर्ड उड़ानें भी होंगी। नेपाल में लॉकडाउन शुरू होने की तिथि यानी बीती चैत 11 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से आज आगमन और प्रस्थान समेत 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हुई। इन उड़ानों के जरिए 264 यात्री नेपाल आए, जबकि एक यात्री नेपाल से विदेश वापस गया। बुटवल में कोरोना विशेष अस्पताल में संक्रमितों के लिए प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है। कोरोना पॉजिटिव होकर संक्रमण से मुक्त होने वालों के खून में मौजूद प्लाज्मा को संक्रमितों के इलाज में प्रयोग करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। ये जानकारी प्लाज्मा अभियंता डॉ सम्राट पराजुली ने दी। झापा के जिला मुख्यालय में मेची प्रादेशिक अस्पताल के नवनिर्मित भवन में सुविधा संपन्न आइसोलेशन सेंटर को संचालित किया गया है। कोरोना संक्रमितों को अस्पताल के पुराने भवन में रखने पर जोखिम बढ़ने के मद्देनजर नए भवन में आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की गई है। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर प्रदेश नंबर 2 की सरकार ने करीब 48,000 किसानों को 4 महीनों के ब्याज भुगतान में अनुदान दिया है। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय ने गत आर्थिक वर्ष में लॉकडाउन के कारण किसानों को आर्थिक भार से बचाने के लिए 5,00,000 रूपये से कम कर्जा लेने वाले 47,882 किसानों का 4 महीनों का ब्याज 21,65,49,000 रूपये सरकार ने चुका दिया है। इसी तरह व्यवसाय पुनः स्थापना के लिए समेत 307 किसानों को 1,20,81,000 रूपये सरकार ने अनुदान दिए हैं। ये जानकारी मंत्रालय के योजना अधिकृत रजनीश मिश्र ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
सादा खाना 100 रूपये, मटन खाना 200 रूपये। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाएको मेनू अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
*1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। कोविड 19 की महामारी के कारण किसी को भी भूखा रहना न पड़े, इस उद्देश्य के साथ रूपंदेही के बुटवल में खाद्य बैंक संचालित किया गया है। ये जानकारी रोटरी क्लब ऑफ बुटवल साउथ के अध्यक्ष प्रेम भुरतेल ने दी। इसी तरह पालपा की रामपुर में संचालित खाद्य बैंक के जरिए करीब 400 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। ये जानकारी लॉयंस क्लब ऑफ रामपुर के अध्यक्ष खिम बहादुर केसी ने दी। इसी तरह विराटनगर में भी आज से खाद्य बैंक को संचालित किया गया है। परसा के वीरगंज स्थित ग्रीन सिटी सामुदायिक प्रहरी सेवा केंद्र आदर्श नगर और अलायंस क्लब ऑफ वीरगंज के संयुक्त आयोजन में आज से ग्रीन सिटी कार्यालय मार्फत 2400 घंटे वीरगंज में ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। ये जानकारी ग्रीन सिटी सामुदायिक केंद्र के अध्यक्ष प्रकाश खेतान ने दी। उनके मुताबिक नागरिकता व आवश्यक प्रमाणों के आधार पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। रौथट जिले के एक युवक की भारतीय इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ईशनाथ नगरपालिका 7 घिउरा के 35 वर्षीय दीनदयाल शाह की हत्या हुई है। सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहार के घोड़ा सहन थाना क्षेत्र अंतर्गत लैन बसवरिया गांव के नजदीक एक तालाब के पास कनपट्टी में गोली लगी हुई हालात में शाह का शव पाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार के मोतिहारी अस्पताल में भेजा गया है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रौथट के गरुड़ा में पुलिस की हिरासत में दलित किशोर विजय राम की मौत के मामले में एक इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस हिरासत में रहे विजय राम को चरम यातना देने के मामले में इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह और 2 हवलदार हिरोज मियां दुनिया व मन्नू कुमार सिंह को सस्पेंड किए जाने की जानकारी पुलिस ने दी। बता दें कि मृतक राम को गरुड़ा नगरपालिका वार्ड नंबर 8 बसबिट्टी जिंगड़िया के 20 वर्षीय निरंजन राम की हत्या में शामिल होने की आशंका में छानबीन के लिए इलाका प्रहरी गरुड़ा ने हिरासत में लिया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की विकास दर में लॉकडाउन के शुरूआती महीनों वाली तिमाही में जबरदस्त गिरावट हुई है। भारतीय केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार सन 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कोरोना वायरस महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी की दर पहली तिमाही में 18% तक गिर सकती है। जनवरी से मार्च तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि देखी गई थी, जो 8 साल में सबसे कम थी। जीडीपी के इन नए आंकड़ों को साल 1996 के बाद से ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी गिरावट बताया गया है। हालांकि इन आंकड़ों पर मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के अलावा आंकड़ा इकट्ठा करने के तंत्र पर भी असर पड़ा है। इसी बीच भारत में अनलॉक 4 में अर्थव्यवस्था को और ज्यादा खोल दिया गया है। आर्थिक गतिविधियां तेज होने से श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी है, खासकर औद्योगिक शहरों में, लेकिन आवागमन के साधनों के अभाव में व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से पटरी पर लौटती नजर नहीं आ रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब भारतीय रेलवे ने 100 से अधिक विशेष ट्रेनों को जल्द ही पटरी पर वापस लाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए और अधिक ट्रेनें चलाने की योजना बनाई जा रही है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,57,22,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,80,15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 8,56,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां 62,18,698 लोग संक्रमित हैं। वहीं 1,87,920 की मौत हो चुकी है और 34,58,559 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां 39,10,901 लोग संक्रमित हैं। वहीं 121,515 लोगों की जाने जा चुकी हैं और 30,97,734 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह भारत में 37,33,936 लोग संक्रमित हैं। इसी तरह 65,922 लोगों की जाने जा चुके हैं और 28,72,714 लोग संक्रमण मुक्त होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसी तरह रूस में 10,48,000 लोग संक्रमित हैं, उनमें से जबकि 17,299 लोगों की मौत हो चुकी है और 8,15,705 लोग ठीक हो चुके हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुआ टेलीफोन संवाद, नेपाल में यूरिया मल आपूर्ति को लेकर हुई बातचीत। काठमांडू घाटी में 481 समेत देशभर में कोरोना के 1069 नए मामले आए सामने, 11 संक्रमितों की हुई मौत। 5 महीनों से बंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान आज से हो रही है शुरू। प्रदेश नंबर 2 की सरकार ने किसानों को 4 महीने का ब्याज दिया अनुदान। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 8,56,000 से अधिक। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।